आप लोगों को अच्छा लग रहा है यहाँ पे?
बहुत अच्छा।
हरे कृष्णा, बोलो कीर्तन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि आगे फिर हमें इस कॉन में प्रसाद नहीं मिलेगा 9 बजे, तो हम यहाँ पर मुश्किल से 8:20 से हम निकल जाएंगे, 8:20 पे हम यहाँ अभी 8:20 हो जाओ तो बता देना मेरे को। वेरी 2 मिनट कीर्तन करते हैं। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे,
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे,
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे,
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे,
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare,
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare,
Jaya Baba Prabhu Baba Prabhu Baba Baba Prabhu Baba,
Jaya Prabhu
Prabhu Prabhu Prabhu Prabhu Prabhu Prabhu Prabhu Prabhu Prabhu Prabhu Prabhu
Prabhu Prabhu Prabhu
Lutau Gau Hari Bo Hari Bo Hari Bo Lutau Gau Hari Bo Lutau Gau Hari Bo Hari Bo Hari Bo Lutau Gau Hari Bo, Shri Vrindavan Dham Ki Shri Garam Govind Sthan Ki Vrindavan Tal Gaur Premanande Pada Japava Srila Prabhupada Ki, हरे कृष्णा। तो ये स्थान हमने कल बताया था, लेकिन कुछ लोग बस में नहीं थे, जो लोग दूसरे बस में थे हमारे बस में नहीं थे, कृष्ण के बस में भी नहीं है, माया के बस में है ना। तो हमारे साथ में जो लोग नहीं थे उनके लिए दोबारा से लीलाओं को बताते हैं। गुरु गोविंद देव जी, क्यों ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज है उसमें बताते हैं, भगवान जब द्वारका में रहते थे, दिल्ली वाला नहीं गुजरात वाला, तो भगवान द्वारका में थे, तो भगवान के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के पुत्र थे उनका क्या नाम था? अनुरुद्ध। अनुरुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? वज्रनाभ। वज नाम, नाम के कारण ही इस जगह का नाम पड़ा वज मंडल। वज नाम ने 84 कोस में अनेकों स्थानों पर क्या किए, भगवान को स्थापित किए। और जो पांडवास थे, पांडवास के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था, 5 पांडव थे उसमें से अर्जुन, अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था परीक्षित। तो परीक्षित महाराज जो दिल्ली जिसे बोलते हैं हस्तिनापुर, वहां के राजा थे। और परीक्षित महाराज के साथ में किसका रिलेशन था, वज्रनाभ का। जब ये सारे के सारे महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद जो भक्त थे वो लोग तो भगवत धाम चले गए, और जो असुर थे वो भी मुक्ति प्राप्त किए, लेकिन नरक तो नहीं जाते क्योंकि भगवान ने स्वयं उनको वध किया। इसलिए वो सनी जी मुक्ति प्राप्त कर कहां चले गए, भगवान के जो ब्रह्म ज्योति उसमें लीन हो गए। तो इस प्रकार से जो वज्रनाथ थे वो बचे, और परीक्षित महाराज जो कि उस समय क्या करते थे, इन सारे स्थानों का निर्माण, इनको देखना ढूंढना, इनका स्थापना करना, एक्सकवेशन कहते हैं इंग्लिश में ना, एक्सक्रेट करना, तो वो यहाँ पर आकर किया वज्रनाथ ने। वज्रनाथ को लेकिन आइडिया नहीं था कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो स्वयं परीक्षित महाराज ने उनको क्या किया, बताया कि कैसे दिखते थे कृष्ण। लाल बोल सकते हैं लोग पूछे कि भाई आपको कैसे पता कि भगवान ऐसे दिखते थे, है ना, आपके पुजारियों ने बना दिया। तो ऐसा नहीं, पुजारियों ने नहीं बनाया, शास्त्रों में तो वर्णित है, लेकिन शास्त्रों से भी ज्यादा किसने बताया, स्वयं परीक्षित महाराज, जिनकी रक्षा भगवान ने गर्भ में करी थी। तो भगवान जब परीक्षित महाराज अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे, तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और उस ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए स्वयं कृष्ण ने उनके गर्भ में प्रवेश करकर अपनी गदा से क्या किया, एक सर्कल बना दिया और उनकी रक्षा करी। तो परीक्षित महाराज ने बचपन से ही किसको देखा था, कृष्ण को देखा था, और जब वो बड़े हुए तो हर एक व्यक्ति को देखा करते थे, क्या ये तो परीक्षित नहीं है, क्या ये तो परीक्षित नहीं है, ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण नहीं है। इसी के कारण उनका नाम क्या पड़ा, परीक्षित, जो परीक्षा करते, परीक्षा करते इति परीक्षित, जो परीक्षाएं करते हैं, क्या ये कृष्ण है, क्या ये कृष्ण है, क्या ये कृष्ण है। तो जब उनको कृष्ण मिले, उससे पहले वो कभी शांत नहीं थे, मतलब वैसे थे, अशांत स्वभाव से रहते थे। तो उनके पिताजी बहुत ही ज्यादा, पिताजी ने प्रभुता दादा अर्जुन, क्योंकि पिताजी तो थे नहीं, उनके अभिमन्यु वध हो गया था उनके मावा, तो सोचते थे ये तो हमेशा अशांत रहता है, कभी शांत नहीं रहता, तो कैसे इसको शांत किया जाए। लेकिन जब वो पहली बार सभा के अंदर कृष्ण की गोदी में आते हैं, तो बहुत शांत हो जाते, खिलखिला खिलक आसानी हंसने लगते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने गर्भ में देखा था। तभी उनका नाम क्या रखा गया, परीक्षित। तो परीक्षित महाराज ने कृष्ण को देखा, और वज्रनाथ जो कि भगवान के स्वयं वंशज थे, लेकिन उन्होंने देखा नहीं भगवान को, तो लेकिन जो भी देखा बचपन में देखा होगा। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज और वज्रनाथ दोनों ने मिलकर यहाँ पर स्थापना करी। परीक्षित महाराज ने कहा, स्थापना करते वक्त अगर कोई भी असुरक्षा आपको महसूस होती है, तो आई विल प्रोवाइड सिक्योरिटी, क्योंकि वो राजा, तो परीक्षित महाराज सिक्योरिटी दे सकते हैं। और वज्रनाथ कौन है, भगवान के वंशज है स्वयं, तो उन्होंने आकर अनेक स्थान पर क्या किया, वो भगवान की लीला स्थली दोबारा से वृंदावन को समझने का प्रयास किया। तो परीक्षित महाराज के साथ में एक और भक्त थे, कौन, उद्धव, भगवान के जो स्वयं मित्र थे। उद्धव, परीक्षित महाराज और वज्रनाथ, इन्होंने मिलकर अनेक स्थान को ढूंढा, लगा, यहाँ पर स्थापना करी। उसी वज्रनाथ जी के द्वारा स्थापित सिर्फ यही विग्रह बचे अभी, वरुण गोविंद, वरुण गोविंद के अलावा और कोई विग्रह यहाँ पर बहुत ही कम विग्रह है। अनेकों यहाँ पर द्वादश वन है, 12 वन, जिसमें से वृंदावन, भांडीर वन, भद्रा वन, ताल वन, ओगला वन, ताल वन, काम्या वन, इस तरह से ये अनेकों वन है यहाँ पर, वृंदावन, गोवर्धन, तो गोवर्धन काम्या वन में आता है, तो इस तरह से अनेकों वन है, और महावन जहाँ गोकुल आता है, वैसे 12 वन है। 12 वनों में अनेक अनेक स्थान पर बहुत ही कम विग्रह ऐसे बचे हैं जो कि ओरिजिनली वज्रनाथ के द्वारा स्थापित है, बाकी सारे विग्रह तो बाद में आए हैं। और फिर वज्रनाथ जी के बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद जब ये कलयुग बढ़ने लगा, तो तकरीबन 500 साल पहले औरंगजेब राजा जो थे वो हुए, और उन्होंने क्या किया, अनेकों स्थान पर जहाँ भगवान के विग्रह थे, तो हिंदू उसके अगेंस्ट राजा था औरंगजेब। उनके पिताजी जो थे, मतलब उनके अकबर, वो तो बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने कई मंदिरों को बनवाने, निर्माण करने के लिए धन दिया, लेकिन जो औरंगजेब थे वो चाहते थे कि सिर्फ मुस्लिम राज है और सारे मंदिरों को तोड़ा जाए, तो उन्होंने वृंदावन के अनेकों मंदिरों को तोड़ डाला, जिसमें से राधा गोविंद मंदिर है उसे तोड़ डाला। और जो यहाँ के गोस्वामी थे जो उसकी सेवा करते थे वो घबरा गए, क्या करें, तो उन्होंने यहाँ से मूर्तियों को ले जाना शुरू कर दिया, और कहाँ लेके चले गए,
जयपुर में, क्यों? क्योंकि जयपुर के जो राजा थे, मुगल राजा जो थे जयपुर के, सॉरी राजपूत जो थे, जय सिंह, महावीर सिंह, सूरजमल, टोडरमल, इन्होंने क्या कहा, इनके पास एक बहुत बुद्धिमानी लगाई इन्होंने, उन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति जब क्रोधी हो, कोई भी व्यक्ति जब अगेंस्ट हो, तो उसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, एनिमी का, दुश्मन का ग्लोरिफिकेशन करने से दुश्मन आपकी साइड में आ जाता है। तो जब औरंगजेब सारे राज्यों पर विजय प्राप्त करता हुआ राजस्थान की तरफ पहुंचा, तो राजस्थान में पहुंचकर राजस्थान के जो राजा थे उन्होंने क्या बोला, जय सिंह ने बोला कि आप बहुत ही समझदार राजा है औरंगजेब, मैं तो चाहता हूं कि इस पृथ्वी में सारे राजा आपके जैसे हो। औरंगजेब बड़ा खुश हो गया, बोला अच्छा, तब तो मेरे को गालियां देते हैं, गंदा आदमी, हिंदू मेरे को बहुत बुरा बोलते हैं, फिर मुस्लिम मेरी तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हम तो चाहते हैं आप हमें शिक्षा प्रदान करें, हमारे सारे राजपूता जितने भी यहाँ पर भक्त हैं उनको सबको, राजा है उनको सबको सिखाएं आप। इस तरह से जब बोला तो बहुत खुश हो गया, बोला अच्छा मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ। और इस तरह से बोला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरे पृथ्वी में जहाँ भी हिंदू मिले मार दो, काट दो, मंदिर तोड़ दो, फिर राजस्थान को छोड़ दो। तो उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से राजस्थान को बचा लिया, इसीलिए यहाँ के जो मुख्य मंदिर है वो राजस्थान में प्राप्त है। राजस्थान में जयपुर को गुप्त वृंदावन बोला जाता है। तो हम किसी दिन अपनी क्लास को जयपुर लेके जा सकते हैं, जहाँ पर ओरिजिनली छह गोस्वामी जो थे उनके मंदिर है। छह गोस्वामी कौन है, जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं यहाँ पर इस पृथ्वी पे अपनी लीलाएं प्रकट करने के लिए, 500 साल पहले औरंगजेब से कुछ समय पहले जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि वृंदावन के अंदर वापस मेरी लीला स्थलियों का निर्माण हो, क्योंकि कलयुग में बौद्ध धर्म आया, शंकराचार्य आए और अनेकों धर्मों ने आकर यहाँ पर सब नष्ट कर दिया था, तो भगवान की लीला स्थलियां बची नहीं। तो स्वयं महाप्रभु जब आए तो उनको बहुत ही ज्यादा रुदन हुआ देखकर कि मेरी स्थलियों का कोई विनाश हो चुका है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था क्योंकि वो थोड़ी में लीला करना चाहते थे। तो महाप्रभु वृंदावन में बहुत कुछ समय के लिए रहे हैं, उनके आखिरी के 18 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में गुजारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, इसलिए उनकी ज्यादा लीला स्थलियां जगन्नाथपुरी में है। लेकिन वृंदावन में सिर्फ आप देखेंगे महाप्रभु बैठक, महाप्रभु बैठक, इसका मतलब महाप्रभु जब परिक्रमा करते थे तो कुछ स्थानों पर बैठकर जैसे हम कथा कर रहे हैं ऐसे कथा होती थी, और जिधर बैठ के कथा हुई, जिधर बैठ कर भक्तों से वार्तालाप हुआ, उन्हीं स्थान के ऊपर लिख दिया गया महाप्रभु बैठक, बैठने का स्थान। तो इस तरह से फिर जब महाप्रभु वापस कहाँ जाते हैं, जगन्नाथपुरी, तो वहां पर उनको दो बड़े बड़े भक्त मिलते हैं, कौन से, रुद्र गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। लेकिन उनका ये नाम नहीं था, उनका नाम क्या था, अमर और संतोष। क्या नाम था, अमर और संतोष नाम था। अमर और संतोष वो साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, अमर और संतोष, लेकिन वो अपने कुछ समय बाद कहाँ आ जाते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर मायापुर के पास जो है कृष्णनगर, और वहां पर मुस्लिम राजा था, मुस्लिम राजाओं का राज्य था उस समय। तो उन्होंने क्या किया, जबरदस्ती उनको मुस्लिम बना दिया, बोले अगर आप चाहते, बहुत बुद्धिमान थे है ना दोनों अमर और संतोष, शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, भागवतम, गीता और अनेक ग्रंथ उनको पूरे कंठस्थ थे उनको। तो राजा जो थे मुस्लिम बड़े समझदार थे, वो बोले कि इनके पास तो बहुत ही ज्यादा लोग जुड़े हुए, अभी जैसे हमसे कोई सोचे वाले इनकी तो आश्रम काश में 60 लोग हैं, तो इस व्यक्ति को अगर अपना बना लो 60 वोट तो हो जाएंगे, है ना। इस तरह से राजा ने सोचा मुस्लिम किंग ने कि इनको अपना बना लो, तो इनके जितने भी लोग इनसे इंस्पायर्ड है हिंदू वो सारे हमारे हो जाएंगे। तो उन्होंने उनको अपने राज्य में नौकरी दे दी, एक को बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर और एक को क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को वित्त मंत्री। इस तरह से दोनों को अलग अलग चीजें दी गई और वो बहुत ही ध्यान पूर्वक उनका वो ख्याल रखते थे। तो जो अमर थे उनको नाम दिया उन्होंने बबीर खास, मुस्लिम नाम, मुस्लिम नेम दिया बबीर खास, और संतोष को नाम दिया सरकार मलिक, साकार मलिक या साकार मलिक, साकार मलिक। तो इस तरह से कुछ समय बाद फिर जब वो क्या करते थे, भागवतम कथाओं से रुचि थी तो वो ऑफिस से छुट्टी ले लेते थे, जैसे आप लोग लेके आए कथा सुनने के लिए, तो उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और फिर क्या करते थे, घर में 6-6, 7-7 दिन कथा चलती थी। तो राजा को बहुत बुरा लगता था, मुस्लिम राजा को किसी ने बताया आप तो इन्हें मुस्लिम बना दिए लेकिन ये तो क्या है, काफिर है, ढोंगी है, मुस्लिम राज्य में राज्य करते हैं, उसी के धन से अपने घर चलाते हैं, लेकिन करते क्या है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं छुपके। कहते हैं अगर कोई बार एक बार कोई हिंदू अगर मुस्लिम का प्रसाद पाले तो वो क्या बन जाता है, मुस्लिम बन जाता है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझे कि ये तो शरीर बनता है, अगर बन भी गया आत्मा तो शुरू से क्या है, जीवेरे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, हम तो कृष्ण के दास रहेंगे, चाहे मुस्लिम में हो चाहे किसी भी धर्म में रहे। तो इसलिए हम लोग आत्मिक है और बाकी लोग क्या होते हैं, शारीरिक नहीं धार्मिक। तो हम जिस धर्म का पालन करते हैं वो धर्म शरीर का धर्म नहीं है, कौन से शरीर, आत्मा का धर्म है, है ना। तो इसलिए आत्मा का धर्म है भगवान के नामों का उच्चारण करना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे।
तो ये इसमें चैतन्य महाप्रभु के जब इनको मिलते हैं तो ये लोग लिखते हैं कि हम किसी सन्यासी या किसी बहुत बड़े आचार्य के शिष्य बनना चाहते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि स्वयं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। ये स्वयं कौन है, कृष्ण है, जो कि आए हैं किस रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो कहते हैं कि ठीक है हम इनसे लेटर लिखकर बोलते हैं, हम आपसे क्या चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जिनका नाम क्या था, बाबिर खास और साकार मंदिर, दोनों जाते हैं और कहते हैं हम बहुत दुखी हैं, हम तो एक मुस्लिम सेना के सेनापति या प्रधानमंत्री बन गए, वित्त मंत्री बन गए, हम चाहते हैं कि आप हमें भक्त बना दें। तो महाप्रभु ने गले लगाते हैं और कहते हैं कि बाबिर खास आज से तुम्हारा नाम है रूप गोस्वामी हरिओम, और साकार मलिक को बोलते हैं आज से तुम्हारा नाम है सनातन गोस्वामी हरि वो। तो बोलते हैं कि जब किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त की जाए या शिक्षा प्राप्त की जाए तो पहले विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने भी पूछा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, तो महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप कहाँ जाइए, वृंदावन जाइए, और वृंदावन जाकर भगवान की लीला स्थलियों को खोजिए, कहाँ कहाँ पर भगवान ने लीला करी है, और वहां पर जाकर अनेकों भक्तों के लिए वैष्णव ग्रंथ लिखिए, जिनको देखकर आने वाले समय में भक्त क्या करेंगे, अपने जीवन में वैष्णव आचरण का पालन करेंगे। तो इसलिए उन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे, रूप गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा और सनातन गोस्वामी ने भी अनेकों ग्रंथ लिखे, और कौन सा एक ग्रंथ और है, लीलामृत, और रूप गोस्वामी ने लिखा नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु, और अनेकों ग्रंथ लिखे। तो इस प्रकार से जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो वृंदावन आए, और रूप गोस्वामी जो थे ये जितने भी गोस्वामी हुए हैं, छह गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, तो इसमें से सबसे प्रमुख आचार्य है रूप गोस्वामी। लेकिन सनातन गोस्वामी जो थे वो एल्डर ब्रदर थे, बड़े भाई, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी ने क्योंकि बहुत ज्यादा शिक्षाएं और लिखी, और हम जो गौड़े वैष्णव है वो उन्हीं की शिक्षाओं का पालन करते हैं, इसलिए हमको क्या कहा जाता है, रूपानुग, क्या कहते हैं, रूप अनुग, रूप गोस्वामी के अनुग, उन्हीं को पालन करने वाले रूपानुग, रूपानुग, लुग लुग एन यू जी लुग, रूपानुग। और एक होते हैं रागानुग, तो रागानुग होते हैं जो लोग किसी शिक्षाओं का पालन नहीं करते, उनको सदा कृष्ण प्रेम उनके हृदय में होता है। तो बहुत सारे जो ब्रजवासी हैं वो रागानुग भक्ति करते हैं, राग में रहते हैं, तो इसलिए हमें उनकी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। हमें वैधी भक्ति सिखाई श्रील प्रभुपाद जी ने कि हम नियम का पालन करें, और नियम का पालन करते करते रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का पालन करते करते एक दिन क्या होगा, हमको भक्ति प्राप्त हो जाएगी, रागानुग भक्ति। तो इस तरह से जो रूप गोस्वामी और जितने भी आचार्य हुए हैं गोस्वामी, ये एक्चुअली मंजरी, मंजरी इसका अवतार है। तो मंजरी क्या होती है और सखी क्या होती है, सखी होती है जिनकी उम्र 13 साल से ऊपर की होती है, और मंजरी होती है जिनकी उम्र 11 साल से नीचे होती है, मतलब वो अभी प्यूबर्टी स्टेज को नहीं पहुंचती है कभी भी लाइफ टाइम, एटर्नल उनका एज रहता है 11 ईयर्स, और वो सखी कहलाती है, मंजरी कहलाती है। और सखी जो होती है उनकी उम्र 11 से बढ़कर 13 तक जाती है। तो जो ये 11 साल तक की रहने वाली मंजरी है, यही राधा कृष्ण की रास लीला, नृत्य लीला, रात्रि लीलाओं में प्रवेश कर सकती है। इस तरह से है जैसे एक कमल खिला, इसके मध्य में बैठे हैं श्री राधा कृष्ण, उसकी हर एक लता के ऊपर, पंखुड़ी के ऊपर अनेकों सखियां हैं, लेकिन जब ये कमल बंद होता है रात्रि में राधा कृष्ण की रात्रि लीलाओं के लिए, तो उसके अंदर सिर्फ मंजरी प्रवेश करती है उनकी हेल्प करने के लिए, चंवर करने के लिए, फैन करने के लिए, एसी तो है नहीं, बटन ऑन किया, वैसे भगवान चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन प्योरिफिकेशन कैसे होगा? तो मंजरी इसकी इच्छा है। तो ये मंजरी जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनकी रात्रि लीला करने के लिए मंजरी यहाँ पर प्रकट होती है। तो मंजरी में से रूप गोस्वामी कौन सी मंजरी है? रूप मंजरी। रूप मंजरी रूप गोस्वामी जो है वो यहाँ पर आते हैं रूप गोस्वामी के रूप में, और बताते हैं कि एक बार राम के लिए एक स्थान है मायापुर में, जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको अनेकों शिक्षाएं प्रदान करी। और उसके बाद चलते चलते रूप गोस्वामी और उनके एक भाई थे अनुपम, जिन्होंने सोचा था कि हम पूरे के पूरे जीवन को त्याग देंगे, लेकिन सनातन गोस्वामी अभी अपने वित्त मंत्री की जो पोजीशन है उसको त्यागे नहीं थे। तो वित्त मंत्री की पोजीशन पे वो बने रहे, और ये रूप गोस्वामी और साथ में अनुपम, ये दोनों कहाँ चले गए? भगवान से चैतन्य महाप्रभु से मिलने प्रयाग में आते हैं। प्रयाग कहाँ है?
अलाहाबाद।
और फिर वहाँ पर 10 दिन तक कथा कीर्तन चलता है, और महाप्रभु दोनों रूप गोस्वामी को और अनुपम को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व और रस तत्व, इन तीन चीजों को प्रमुख तरीके से समझो। कौन सी तीन चीजें? रस तत्व, रसना तत्व, रसना है? रसना तत्व, फ्रूटी तत्व। कौन सा तत्व? रस मतलब रस तत्व मतलब आवाज आ रही है? सीधा इसके बिना आ रही है। रस तत्व, भक्ति तत्व और कृष्ण तत्व। कहते हैं किवा विप्रा किवा न्यासी शुद्र किवा नए यही वेता तत्व वेता से ही गुरु है। इस संसार में वही व्यक्ति गुरु या प्रचारक बन सकता है जो व्यक्ति क्या जानता है? कृष्ण को तत्व से जानता है। चाहे वो विप्र हो, ब्राह्मण हो, या फिर सन्यासी हो, या फिर शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जानता है कि कृष्ण कौन है, परम है, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंदम विग्रहम अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, तो जो ऐसा सोचता है वही व्यक्ति क्या होता है? सही भक्त बन सकता है, गुरु बनने योग्य है, प्रचार करने योग्य है। और अपना तत्व जाने कि हम कौन है? जीव तत्व। और जीव का क्या स्वरूप है? भगवान के दास बनना। तो इस तरह से रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी प्रयाग में, और बोला कि अब आप यहाँ से जाइए और वृंदावन, जब आप पूरी जाएं तो वृंदावन से होते हुए जाएं। तो वृंदावन आते हैं अनुपम और रूप गोस्वामी, लेकिन जब वो पूरी वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में अनुपम अपना क्या करते हैं? शरीर त्याग देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में फिर वो चलते चलते कहाँ पहुँचते हैं? पूरी पहुँचते हैं, और वापस जाकर किससे मिलते हैं? महाप्रभु से मिलते हैं। और फिर महाप्रभु से मिलने के बाद में महाप्रभु उनको कहते हैं कि आप यहाँ मत रुकिए, आप अपनी लाइफ टाइम कहाँ पर गुजारिए? हाँ, वृंदावन में जाकर। तो फिर वृंदावन में वो परमानेंटली यहाँ आ जाते हैं। और रूप गोस्वामी जब वृंदावन में विराज रहे थे तो एक बहुत सुंदर लीला हुई। वृंदावन में जब वो आते हैं, अरे बोला दी डोंट टच, वृंदावन में जब वो आते हैं तो उनको एक गोपाल मिलता है, ऐसा शरारती गोपाल, ना ऐसा नहीं होता, वो अच्छा गोपाल है, ये शरारती गोपाल। तो वृंदावन में आते और कहते हैं, अरे बाबा कुछ पिएगा? बहुत थका हुआ लगता है ना, जैसे गोपाल ने हमारे ड्रामा में एक्टिंग किया था, बड़ा थका हुआ लगता है, कुछ पिएगा? तो कहते हैं हाँ पीऊँगा, बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है। कहते ठीक है, ये मटके में दूध है, पी लो, मिठाई वाला दूध, मलाई वाला दूध। तो पिला देते हैं और दूध पीते हैं। उसके बाद कहते हैं ये कुल्लड़? कहते हैं मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। तो इंतजार करते रहते हैं, वो आता नहीं है। फिर काफी देर जब वो आता नहीं है तो उनके हृदय में वेदना होती है कि कौन था जिसने मुझे दूध पिलाया? ऐसा दूध तो मैंने कभी जीवन में पिया नहीं है, तो अमृत स्वरूप दूध मेरे को आज पीने को मिला है। और अमृत स्वरूप दूध पीने से क्या हुआ? मेरा मन ऐसा कर रहा है कि बस मुझे साक्षात कृष्ण के दर्शन हो गए। जब इस प्रकार से रूप गोस्वामी सोच रहे थे तो कुछ ही समय बाद उनको फिर दोबारा से गोपाल मिलते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, सॉरी भगवान सपने में बोलते हैं कि मैं यहाँ पर कुंजों टीलों के अंदर दबा हुआ हूँ, और मुझे तुम दोबारा से क्या करो, निकालो, और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो सोचते हैं कहाँ मिलेंगे भगवान, तो इतना सपने में तो आते हैं लेकिन अभी सपने में आ जाए हम ढूंढे कहाँ मिलेंगे भगवान, तो कोई गाइड चाहिए। तो स्वयं भगवान गोपाल का रूप रख के आते हैं और कहते हैं रे बाबा तुझे जो चाहिए ना वो मिलेगा गोमा टीले पे। कौन से टीले पे? तो गोमा नाम क्यों था? क्योंकि गो मतलब गाय, गो माँ मतलब माता, गाय माता जिस टीले पर आकर दूध देती है वो गोमा टीला है।
तो राधा गोविंद जी का जो मंदिर है जहाँ हमें जाना था हम जा नहीं पाए, वो गोमा टीला, उसमें गाय स्वयं आती थी और उस टीले के ऊपर खड़े होकर दूध की नौछावर, मतलब दूध निकलता था ऑटोमेटिकली। कहते हैं कि गाय का दूध निकालने के लिए बछड़ा चाहिए होता है, लेकिन बताते हैं कि भगवत गीता ऐसी दूध है जिसे स्वयं अर्जुन जैसे बछड़े के लिए स्वयं कृष्ण रूपी गाय ने प्रदान किया था। तो इसलिए भगवत गीता जो व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है, अध्ययन करता है, सुनाता है, सारे के सारे भगवान कृष्ण रूपी गाय का, अर्जुन का जो रूपी बछड़े द्वारा निकाला गया दूध है, उसे वो पान कर सकता है व्यक्ति। तो इस तरह से गाय आकर उस पर अभिषेक करती डेली गोमा टीले पे। तो रूप गोस्वामी जाते हैं अनेकों भक्तों को लेके और उस टीले को खोदते हैं। खुदाई में अंदर से क्या निकलते हैं? गोविंद देव भगवान की। तो राधा गोविंद, गोविंद देव जी वहां पर निकलते हैं और फिर लाकर रूप गोस्वामी उनकी स्थापना करते हैं। और वहां पर जो अकबर थे उन्होंने कुछ दान दिया था जिससे 5 मंजिल की मीनार बन गई थी, लेकिन औरंगजेब के समय में 3 मीनारें ऊपर की तोड़ दी गई, 2 मीनारें अभी बची हैं। उसी में बहुत सुंदर मंदिर है, तो उसमें हम किसी दिन जा सकते हैं। और उसके बाद में साथ में जो ये स्थान है ये भी गोविंद देव जी का स्थान है, लेकिन ये 5000 साल पुराना है। तो जिस तरह से वो बोल रहे थे कि काल सर्प दोष लगता है जिस व्यक्ति को, मतलब जिसके शरीर इसके ऊपर क्या है, सर्प लगा हुआ है, उसके साथ अनिष्ट होता है, जीवन में बहुत दुख आते हैं। ये वैसे तो भक्तों को नहीं सताते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति कर्मी जीवन जीता है तब तक उसको बहुत सताते हैं। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रणाम करता है तो उसका काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि भगवान के जो ये थे कौन, वरुण, इनको एक बार शक हो गया कि कैसे भगवान मेघनाथ के सर्प पाश में बन सकते हैं। इस बात को सोचने के लिए वो सोच रहे थे कि कैसे भगवान है। तो जब उनको यहाँ आए उन्होंने देखा कि स्वयं गोपाल क्या कर रहे थे, एक ग्वाल बाले के ऊपर बैठकर उसे बोल रहे थे उड़ उड़, और फिर ग्वाल बाला उड़ रहा था, है ना, और उस पर भगवान गोविंद बैठे हुए थे। और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने बोला, किसने, गरुण ने, कि क्या ये वही कृष्ण है जो कि मेरे बिना उड़ रहे हैं, क्या ये वही भगवान है जिनको, जो मेरे ऊपर सवारी करते हैं। तो गरुण जी को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया 12 भुजाओं का, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर 12 भुजाएं हैं, है ना। और विराट रूप देखकर वो समझ गए, जैसे अर्जुन भी समझ गए थे स्वयं कृष्ण कौन है, भगवान है। तो गरुण जी एक्चुअली खुद तो जानते हैं भगवान है, लेकिन हमारे लिए भगवान बार बार लीला करते हैं गरुण देव की, हम समझें कि कृष्ण जो है वो ही विष्णु है, और विष्णु जो है वो कृष्ण का क्या है, अवतार है। एक्चुअली कृष्ण परम भगवान है और कृष्ण से ही विष्णु की उत्पत्ति होती है, है ना। इसीलिए अर्जुन ने क्या बोला कि भगवान आपने 12 अपना विराट रूप तो दिखाया है, लेकिन अपने स्वयं के रूप में आप दोबारा से आ जाइए, मुझे इसे देखकर डर लग रहा है। तो भक्तों को भगवान का विष्णु रूप पसंद नहीं है, कौन सा रूप पसंद है, श्याम सुंदर रूप। आपको विष्णु रूप पसंद है, ठीक है, तो पूजा करो, ठीक है। भगवान को, भगवान का विष्णु रूप पसंद नहीं है क्योंकि विष्णु रूप डरावना है, हाथ में शंख है, चक्र है, कमल है, है ना। तो चक्र तो किसके लिए है, असुरों के लिए है, शंख किसके लिए है, युद्ध की स्टार्टिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, कमल है जो है भक्तों की ऊपर क्या करने, ज्ञान प्रदान करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए। तो इस तरह से भगवान के अनेकों चीजें हैं, लेकिन भक्तों को पसंद है क्या, कृष्ण। क्यों, श्याम सुंदर क्यों, उनके हाथ में क्या है, बांसुरी। बस भगवान की बांसुरी सुनते रहो, बस यही चाहिए भक्तों को। भगवान विष्णु रूप पसंद नहीं है, इसलिए जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो वैकुंठ धाम तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन वैकुंठ धाम में सर्वोपरि धाम कौन सा है, वहां पे बहुत धाम है, नवदीप धाम, साकेत धाम, द्वारिका धाम, वैकुंठ के भी अलग नाम है, लेकिन सबसे उत्तम धाम कौन सा है, गोलोक वृंदावन। उसे गोलोक धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गायों का लोक है, वहां पर गोपाल रहते हैं, गायों को पालने वाले गोविंद, जो गायों की रक्षा करते हैं, द प्रोटेक्टर ऑफ काउज इज नोन एज गोविंदा। तो गोविंद भगवान वहां रहते हैं। और अगर हम श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे तो हम कहां जाएंगे, गोलोक धाम, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर ये लीला हुई थी जिससे स्थापित होता है कि जो भगवान विष्णु है वो एक्चुअली कृष्ण का ही एक्सपेंशन है ना। और फिर वापस ग्वाल बाल क्या बोले कि हमको ये विष्णु रूप नहीं देखना, हमको कौन सा देखना है, तुम्हारा कृष्ण रूप देखना है, क्योंकि हम किसी भगवान को नहीं चाहते, हम किसको चाहते हैं, अपने सखा कृष्ण को चाहते हैं, तो तुम तो हमारे सखा हो। एक्चुअली क्यों बोला उन्होंने ऐसा, और भगवान भी फिर क्या किए, उनको भ्रमित कर दिए, भूल गए सारा कि तुमने विष्णु रूप देखा। क्यों करते हैं भगवान ऐसी लीला, कौन बताएगा? कि सब कुछ भुला देते हैं लीला दिखाने के बाद। हाँ बताएं प्रभु जी। हाँ और हाँ संबंध खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर भगवान मानेंगे तो क्या करेंगे, घर में ऑल्टर में लगा देंगे या टोकरी में बिठा के इधर उधर घुमाएंगे मेरे को। लेकिन बच्चा होता है, बच्ची होती है, तुमने खाया नहीं खाया, क्या पहना क्या किया, सारी चीजों की देखभाल करते हैं। लेकिन जो भगवान होते हैं उनको तो दिन में दो बार तीन बार भोग लगाते हैं, तब पट खोलते हैं, भोग लगाया बस, उसके बाद तुम भले हम भले, है ना। बना होना चाहिए, इसलिए बताया ना वैदिक भक्ति है। लेकिन खाली यही नियम नहीं होना चाहिए कि भगवान को भोग लगाने के लिए रखें, भगवान के साथ वार्तालाप करना चाहिए। जैसे अपने बच्चों से स्कूल से आने के बाद पूछते हैं कैसे हो, क्या था, क्या रहा, ऐसे गोपाल से पूछना चाहिए, ठाकुर जी से पूछना चाहिए, सॉरी हम आपसे सुबह से बात नहीं कर पाए, आज बिजी थे, आज बहुत कष्ट है, आज ये है वो है, और उनके बताए गए ग्रंथों का उनको श्रवण कराना चाहिए, भगवान के द्वारा बताए गए ग्रंथों को उनको सुनाना चाहिए। अगर हम इस तरह से करते हैं तो क्या होगा, भगवान फिर हमसे रिलेशन स्थापित करते हैं। किसी व्यक्ति से रिलेशन बनाना है तो खाली भोग लगा दो, मानो रीना माता जी को आप दिन में तीन बार बिस्कुट खिला दो तो रिलेशन थोड़ी बनेगा। कैसे बनेगा रिलेशन, उनसे बात करेंगे, उनका फोन करेंगे, SMS और उनका ग्लोरीफिकेशन करेंगे, आप तो ऐसी हो माता जी, आपने इतनी अच्छी सेवा करी, वो करेंगे आप तो ऐसी हो, आप तो ऐसी हो, है ना। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान का ग्लोरीफिकेशन करेंगे, अरे ठाकुर जी आप तो इतने सुंदर हो, अरे आप तो इतने सुंदर हो, फिर ठाकुर जी करेंगे मैं कुछ नहीं हूँ, सबसे सुंदर तो मेरा भक्त है मेरा भक्त है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन इस बात की स्थापना कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये बात तो भगवान भी बोल सकते थे, लेकिन अर्जुन को क्यों बोले, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपनी कही हुई बात को तो काट सकता हूँ लेकिन भक्त की कही बात को नहीं काट सकता। भगवान कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भक्त का मान भगवान टलने नहीं देते, इसलिए भगवान कहते हैं कौन तुए प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति, कौन तु पुत्र इस बात की घोषणा कर दो कि नामा भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो अर्जुन को ये बोलने के लिए बोला क्योंकि अगर मैंने बोला तो मैं काट दूंगा, लेकिन तुम बोलोगे अर्जुन तो बात। तो ये स्थापित करना चाहिए रिलेशन, हम भगवान का गुणगान करें और भगवान भक्त का गुणगान करें। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में किसको स्थापित किया, कृष्ण को, और फिर कृष्ण ने किसको स्थापित किया, प्रभुपाद जी को। श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम यात्रा की, वरुण गोविंद स्थान की, इताई गोट प्रेमानंदे। तो अब यहाँ पर प्रसाद लाए आपके लिए दीपक प्रभु जी, यहाँ का बना हुआ स्वयं मलाई मठा, तो इसका पान करेंगे, उसके बाद तुरंत इस्कॉन टेम्पल चलेंगे हम लोग। स्पिरिचुअल गाय गोलोक वृंदावन धाम में या वैकुंठ धाम में जो कुछ भी होता है उनका भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक शरीर। वहाँ पे गुलाब जामुन भी कैसा होता है, ट्रांसेंडेंटल, आप उसे ऐसे दबाओगे वो फिर प्रकट हो जाएगा। फिर बार वहाँ की गाय भी ट्रांसेंडेंटल है, वो उनका दूध भी ट्रांसेंडेंटल है, आप दूध डालोगे जमीन में नहीं गिरेगा, वो ऐसे तैरता है, ट्रांसेंडेंटल चीज है। भगवान के कपड़े भी बातें करते हैं, ठाकुर जी आज ये पटका और ये मैच नहीं हो रहा है, आज मुझे चेंज कर दो, आज मुझे पहन लो, ऐसे बात करते। गुलाब जामुन कहता है कब वो दिन आएगा जब मैं ठाकुर जी के मुंह में जाऊंगा, मुंह में जाता है तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता, फिर वापिस आ जाता है, सोचता है कि अब अगली बार कब जाऊंगा। तो यही सारी सेवाएं चलती रहती हैं। जैसे आत्मा है ना, नैनम चंद्रति शत्रानी, तो आत्मा ही तो पूरा प्रकट रूप हो जाए, सचित आनंद विग्रह पूरी बॉडी बन जाता है। तो जब बन जाएगा तो उसको काटो को टेका नहीं, जलाओ जलेगा नहीं, ट्रांसेंडेंटल हो जाता है।